जिनके गुणों के गान में हे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे। समय सार परमागम का बन्नाधिकार चल रहा है और जिसमें गाथा 276 और 277 में चल रही थी, गाथा और टीका दोनों हो चुके हैं। उनके संदर्भ में जो निष्कर्ष है उसे अपन पढ़ते हैं, पेज नंबर 399 इस प्रकार आत्मख्याति में न्याय शास्त्र की पद्धति से तर्क की कसौटी पर कसकर यह सिद्ध किया गया है कि आतारंग आदि शब्द श्रुति के ज्ञान रूप व्यवहार ज्ञान, नव तत्वार्थ के सिद्धांत रूप व्यवहार सिद्धांत और षटकाल के जीवों की रक्षा रूप व्यवहार चारित्र ने? उसमें आता हूं। सबके पास ये शास्त्र नहीं है क्या? ठीक है, कितना 65 देख लेना मुझे इसमें। ये काम मेरे से मत कराओ, अपना कर लिया कहना भाई। मैं कम सुनता हूं, तुम सब एक साथ बोलते हो तो कुछ नहीं सुनता। मेरे कान में ऐसा बहरापन है कि एक आदमी बोले तो सुन लूंगा, सब बोलेंगे तो कुछ समझ में नहीं आता क्या बोल रहा है। वास्तविक व्यवहार सिद्धांत और सरकार के जीवों की रक्षा रूप व्यवहार चारित्र वास्तविक सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र नहीं है, क्योंकि आत्मज्ञान रूप निश्चय ज्ञान, आत्मदर्शन रूप निश्चय दर्शन और आत्मस्थिरता रूप निश्चय चारित्र ही वास्तविक सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र हैं। इन तीनों की एकता ही वास्तविक मोक्ष मार्ग है। यही कारण है कि व्यवहार नये निषेध करने योग्य है और निश्चय नये उसका निषेध करने वाला है। इस प्रकार यह सुनिश्चित होता है कि व्यवहार नये और निश्चय नये में परस्पर निषेध निषेधक संबंध है। अपन गाथाओं पर तीन प्रवचन अपन ने किए और बहुत विस्तार से उसका मर्म अपन ने समझाया, लेकिन अब फिर उसकी हेडिंग पर चलते हैं कि वो बता रहे थे कि इसमें ये बताना चाहते हैं कि व्यवहार नये निषेध करने योग्य है और निश्चय नये उसका निषेध करने वाला है। तो ऐसा क्यों है? पहली बात तो मैं ये कह दूं कि जब पहले पहले अपन ने वो पंक्तियां पढ़ी थी टीका की, कि जिसमें ये लिखा था कि आचारांगादि शास्त्र व्यवहार सम्यक दर्शन है, सात तत्व व्यवहार व्यवहार सम्यक दर्शन है, आचार अन्य के ज्ञान व्यवहार सम्यक ज्ञान है और छह काय के जीव व्यवहार चारित्र है। यानी उसमें बुद्धिपूर्वक अपन ने ये बताया था कि इसमें छह काय के जीवों की रक्षा का भाव, उसको व्यवहार नहीं कहा, तो छह काय के जीवों को ही व्यवहार कह दिया। ऐसे ही आचारांग शास्त्रों को पढ़ने कोई आचारांग आदि शास्त्र को ही उन्होंने व्यवहार सम्यक ज्ञान कह दिया और नौ तत्व को ही उन्होंने व्यवहार सम्यक दर्शन कह दिया। सिद्धांत ज्ञान और चारित्र उसमें नहीं लगाया था। तो वो क्यों नहीं लगाया था? तो ये बताया था कि वो आश्रयभूतता की बात, क्योंकि ये उनके आश्रयभूत हैं। जब व्यवहार सम्यक दर्शन का अध्ययन होगा तो व्यवहार शास्त्र तो होंगे ही, तब तो होगा। यदि सिद्धांत होगा तो सात तत्वों का अध्ययन होगा, समझ होगा, तभी होगा ना। और छह काय के जीवों की रक्षा का भाव होगा तभी वो चारित्र में निमित्त बनेंगे, इसलिए नहीं बताया था। आप यहां कह सकते हैं कि वहां नहीं बताया था और निष्कर्ष में आप इसमें बता रहे हैं, तो उसका कारण तो हम बता दिया, अब फिर उस बात को अधूरी क्यों छोड़े? क्योंकि आप यही समझ लेंगे कि वो बताया था तो कहे कि नहीं नहीं वो गलत है झूठ है, तो कले सब विद्यार्थी जाके प्रवचन करने लगेंगे तो मुश्किल हो जाएगी। ओके छोटे दादा ने बताया था, अब कौन आएगा छोटे दादा से पूछने, किस किस को छोटे दादा बताने जाएंगे कि हमने क्या बताया था। इसलिए अब ये जो लिखा है ये वास्तविक स्थिति ये है, वो तो कारण बस वहां इतना कहा था। क्या है सब आचारांग आदि शब्द सूत्र के ज्ञान रूप व्यवहार ज्ञान और नव तत्वार्थ के सिद्धांत रूप व्यवहार सिद्धांत और सठकाय के जीवों की रक्षा रूप व्यवहार चारित्र वास्तविक सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र नहीं है। ये निष्कर्ष के वाक्य में जो भाषा फाइनल रूप से सुधार कर अपन ने लिखी है तो यही फाइनल है। वहां जो बात बताई थी वो किस कारण से बताई थी उसका कारण वहां स्पष्ट कर दिया गया था, इसलिए इसमें और उसमें कोई मतभेद नहीं समझना। और ये बताने के लिए तो देखो कितना नया रहस्य मैं आपको बता रहा हूं और तुम ही यही मान बैठो कि वो ही विभा सम्मदर्शन ज्ञान है, वो तो उस वक्त वहां की बात है क्योंकि वे आश्रय को बताना चाहते थे तो उसने वहां पर नहीं जाना है ना। जैसे कि अभी अपन बोलते हैं ना बहुत लोग तत्वार सिद्धांतम का सिद्धांत करना व्यवहार सम्मदर्शन है, क्या बोलते हैं तत्वार सिद्धांतम का सिद्धांत करना। अब ये समझते कि तत्वार सिद्धांतम में सिद्धांत आ गया ना भाई साहब, ये डबल सिद्धांत क्यों बोलते हैं है? तो क्या तत्वार्थ का बोलो, वहां हम सिद्धांत का निषेध करेंगे तो फिर दूसरी जगह भी काट देंगे। ऐसे बहुत से भाषा के प्रयोग हम देखते हैं अपने विद्वानों के बीच भी, आप लोगों के हम सुनता कितने हैं, जो विद्वानों की सुनते हैं तो उसमें हमें ख्याल में आता है। अब देखो किंतु आत्मज्ञान रूप निश्चय ज्ञान और आत्मदर्शन रूप निश्चय दर्शन और आत्मनिष्ठा रूप निश्चय चारित्र ही वास्तविक सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र है, और इन तीनों की एकता ही वास्तविक मोक्ष मार्ग है। ये नक्की निष्कर्ष है इस गाथा का। इसलिए यही कारण है कि व्यवहार न निषेध करने योग्य है और निश्चय न उसका निषेध करने वाला है। अब ये बताना है ना कि व्यवहार न निषेध करने योग्य है और निश्चय न उसका निषेध करने वाला है, इसलिए यहां स्पष्ट शब्दों में व्यवहार मोक्ष मार्ग नहीं है एक स्पष्ट घोषणा कर रहे हैं। और ये जानते हुए भी कि समस्त जनागम में जगह जगह उनको भी व्यवहार मोक्ष मार्ग कहा गया है, तो कहते कैसे आप इसलिए टकरान होगा ना, टकरान क्यों होगा, वो कहा गया है इसीलिए तो यहां ये बात बता रहे हैं कि वो कहा गया है उसकी विशिष्ट अपेक्षा है। क्या कहा गया है उसकी विशिष्ट अपेक्षा है लेकिन वास्तव में ये नहीं है। क्यों नहीं है वास्तव में? अब तीन दिन की अपन ने इतनी मेहनत की तो उसके आधार पर मैं आपसे पूछ सकता हूं क्यों नहीं है। आत्मख्याति में जो तर्क दिया पहले तो उन्होंने सामान्य तरीके से बताया, फिर तताई कह करके और विशेष तरीके से बताया, फिर अपन ने उसको तीसरी दफे बताया, तो अब मैं आपसे पूछता हूं कि आप बता सकते हैं अपनी भाषा में एक वाक्य में कि वे क्यों नहीं है सच्चे मोक्ष मार्ग? क्यों? क्योंकि वे अभव्य के भी हो जाते हैं, है ना, मूल मुद्दे की बात है। अब जो अभव्य को भी हो जाए ख्याल में आया ना, वो कैसा मोक्ष मार्ग होगा, क्योंकि उसे मोक्ष तो कभी होना नहीं है। अच्छा मतलब मोक्ष मार्ग है वो है, मोक्ष मार्ग हो गया तो जिससे मोक्ष नहीं हो उसे मोक्ष मार्ग कैसे कहा जा सकता है जगत में? जैसे मैंने कहा ना अनुवृत आंदोलन चलाया ना, तो उसमें अनुवृत पुरस्कार दिए गए तो वो लगभग सब अध्ययनों को दिए गए, शंकराचार्य शर्मा को,
अरे भाई समय दर्शन के बिना तो वृद्ध होते ही नहीं है, है? तो ऐसा ही हो गया ना कि समय दर्शन की प्रतियोगिता में मिथ्या दृष्टि जीत गया, क्षमा वाणी की प्रतियोगिता में गर्दन काटने वाला जीत गया, जो डॉक्टरी की परीक्षा में नहीं बैठा वो मेडिकल में टॉप कर गया। ऐसी बात होती है, आप समझो कितना व्यवहार समय दर्शन को मोक्ष मार्ग कहना कैसा असंभव कार्य है। राजन जी समझ लो आप, उसको हेतु कहना जिसको आप हेतु मानना चाहते हो वो ऐसा बिल्कुल हाथ पर रखे आंवले जैसा असंभव दोष है, पर आप नहीं पहचान पा रहे तो क्या करे। जो अभव्य को भी हो जाए है? जिसमें टॉप अभव्य कर जाए, मैंने एकाध जैनी को भी दिया जिसने कायदे से अनुवृत्त लिए हों, ऐसे किसी एकाध जैनी को अनुवृत्त पुरस्कार मिला आज तक है? ए ध्यान में भी सर्टिफिकेट बढ़ते होंगे, क्यों तो ध्यान किसे कहते हैं उसका स्वरूप ही नहीं समझने वाले ध्यान में टॉप कर जाते होंगे। हरताल यूनिवर्सिटी में टॉपर्स तो होते ही होंगे ना, ध्यान ध्यान में एमएससी ध्यान में सब कराते हैं ना, जो लोग यूनिवर्सिटियों में कोर्स लगा रखे होंगे तो क्या होता होगा आप समझ लीजिए क्या क्या भी पोजिशन है, समझ जी। तो वो उसकी तरफ तो कह रहे आप तो आलोचना नहीं कर रहे भाई साहब, ये इतना मोटा चल रहा है इस समाज को, आश्चर्य तो इस पर होना चाहिए, क्यों कि हम पर इतना मोटा अज्ञान भी हम सबको चल रहा है और हमारे हम तालियां बजाते हैं और तालियां अपने में पेट के ले जाता है वो आदमी। वो कहता है कि भाई मेरी तो पूरी तरह समझ में नहीं आई, मैं तो लोग ज्यादा अध्ययन करता नहीं हूं, मेरी समझ में नहीं आता, मैं आप जैसा बोल नहीं सकता हूँ, इतना बढ़िया बढ़िया फिर भी मैं बोलता हूँ, फिर भी मैं ऐसी घोषणा पूर्वक वो कह रहा है कि मुझे इस बारे में कुछ नहीं आता, वो मैं न समझा सकता हूँ। और हम तालियां पीट के कहते कि आपने इतना बढ़िया समझाया कि हम उसको क्या कह सकते हैं, बोले क्या करें है? क्यों बहन जी बोलो, होता क्या नहीं हो रहा है सारे में है? हमारी मजबूरी है ना। ये तत्व ज्ञान के क्षेत्र में भी ये चलेगा क्या? यानी वास्तविक अच्छे को वास्तविक अच्छा कहना और जो अच्छा नहीं है उसके को बुरा नहीं कहो तो उसके बारे में चुप तो रह सकते हो ना, कहने नहीं प्रशंसा करना तो जरूरी है ना, तो प्रशंसा सकल की करो, अकल की करो, टोपी की करो, कुर्ता की करो, कौन मना करता है, है? बहुत नम्र व्यवहार है, ये सब करो ना। लेकिन क्रमवत पर्याय बहुत अच्छी समझाई, ये प्रशंसा की इसके लिए ये क्या जरूरी है, मेरा मतलब समझना क्या नहीं है, है? गुरुदेव की के मुख से भी प्रशंसा निकलती थी, लेकिन मैं आपको एक महामंत्र बताता हूं आज, वो एक एक शब्द नपातुला बोलते थे, चाहे 100 दफे बोलें लेकिन वो ही वाक्य बोलेंगे वो, मंडा नहीं दी। आप कहते हमने इतने पेज भेज दिए, इसमें एक ही पेज छपा, हमारे सारे पेज रिजेक्ट कर दिए आपने, लेकिन वो ही बात 100 दफे दोहराई, तुमने 100 दफे भेज दी तो हम क्या करें, समझ आ गया आपकी ना, आपकी क्या नहीं आई, क्योंकि इतने विवेक जब वो बिल्कुल नपे तुले शब्दों में जिसको जो जैसे मान लो किसी की अकेला सिर की प्रशंसा करना है, विकल्प आ गया उन्हें सिर या छे नरम छे, उनके दो चार शब्द हैं उसमें से एक कभी नहीं कहेंगे कि ये तत्व ज्ञानी है, कि इसको बहुत अच्छी पकड़ है, कि इसको अकड़ है, है? क्या कहें, नरम मानस है, नरम मानस है, दान भी अच्छा निकालता है, लेकिन उससे क्या होता है, उससे तो धर्म तो होने वाला है नहीं, साथ में ये भी लगा देंगे क्यों है? है? अब आपके बारे में कितना कहा और तुम सारी छान मारो, वो पूरे में वो एक ही वाक्य मिलेगा, मैंने भाषा नहीं आती, मैंने ज्यादा समझाते नहीं, इसलिए ऐसा नहीं है भाई साहब।
वो तुलसीदास जैसे हैं अपने गुरुदेव।
ये तुलसीदास जैसे कैसे?
तुलसीदास जी ने राम से कहा, उनकी बातचीत होती थी अपनी भाषा में, मतलब बातचीत होती थी माने वे ऐसी कहते थे, हे राम तुम मेरी तुलना इन लोगों से मत करना है। ये बड़े बड़ी कविता लिखने वाले, छंद लिखने वाले, अलंकार लिखने वाले, भंवर तो मेरी कविता टूटी फूटी है, छंद में भी दोष है, अलंकार भी बढ़िया नहीं है, तो इनसे मेरी तुलना मत करना। मेरी जो भक्ति है वो तो इनकी जो भक्ति है उसमें एक बहुत बड़ा अंतर ये है कि मेरी ये भक्ति झूठी नहीं है और इनकी ये भक्ति झूठी है। झूठी नहीं, क्या कह रहा हूं, झूठी, समझ में आए ना? झूठी और झूठी में क्या अंतर है? जे यू, समझे ना, और जे एच यू। मैंने सिर्फ आपके अलावा किसी की भक्ति नहीं की, अकेली आपकी ही की, समझ गए ना? और ये तो हर दरबार में पहुंचते हैं, एक कविता बना ली, आदनाथ के लिए भी वही, अजितनाथ के लिए भी, संभवनाथ के लिए भी वही, क्यों, और फिर राजेंद्र बंसल के लिए भी वही, डॉक्टर फारेल के लिए भी वही, जो 8 बजे अगले नाम ही तो बदलना है ना, खत्म, बना बना आपने अभिनंदन पत्र रखा है, क्यों? ये सब झूठे लोग हैं जो आपको झूठी चीज परोसते हैं, पर इनका कोई भरोसा नहीं है जो आपके लिए कह रहे हैं, कल नरकगामी के लिए भी वही शब्द कह देंगे, समझिए ना? ये कौन कह रहा है दादा? जिस आदमी ने विनय पत्रिका नाम की एक किताब लिखी जो 400 पेज की है, जिसमें 600 पद होंगे और जिसमें एक भी ऐसा देवता नहीं है कि जिसकी प्रशंसा उन्होंने नहीं लिखी है, पारसनाथ की भी लिखी, बोलो, पारसनाथ की स्थिति भी लिखी, अब वो ऐसे कह रहा है, उसकी बात सही कैसे माने, बोलो। तो उस किताब का नाम क्या है? विनय पत्रिका। विनय पत्रिका माने उनने चिट्ठी लिखी, पत्रिका माने चिट्ठी, अत्यंत विनय पूर्वक अपने श्री राम को उनने 600 चिट्ठियां लिखी और वो 600 चिट्ठियां उन्होंने प्रकाशित हुई विनय पत्रिका के नाम से। आगे चलता ना, श्रीमद ने पत्र लिखे थे वे प्रकाशित हो गए, तो बहुत धीरे धीरे पत्र लिखने की प्रकाशन की परंपरा हो गई। उनकी वह सबसे पहला पत्रों को प्रकाशित का कोई ग्रंथ है तो वो विनय पत्र का है। 600 पदों में, लगभग 600 पद, गिनती पूरी पक्की मत समझ लेना, अपने महाविद्यालय के विद्यार्थी जैसे कोई 600 बोलता, कोई 650, कोई 700, क्यों हम झक मार के हमें सुनना पड़ता है, और क्या क्या करें, हर एक का विरोध करें। तो वो पत्रकार की तो कैसे, लेकिन उन्होंने हर एक पत्र में उस देवता की स्तुति लिखने के बाद ये लिखा कि हे देवता, यदि तू मेरे पर प्रसन्न है मेरी भक्ति से, तो इतना करना कि मेरे हृदय में राम के अलावा किसी की भक्ति कभी न आए, बस खत्म। ऐसा मेरे हृदय को बना देना कि मैं उन राम के अलावा किसी की भक्ति नहीं करूंगा। सीता जी को भी पत्र लिखा, किसने? राम ने नहीं, तुलसीदास जी ने। और क्या लिखा उसे मालूम, सुना दूं? क्योंकि तुम तो पढ़ने वाले हो नहीं, वो विनय पत्र का तुम तो समय सारे नहीं पढ़ते हो, तो विनय पत्र का तो क्या पढ़ोगे? हे सीता माता, आप तो राम के बहुत नजदीक रहती हैं, अब मेरी प्रार्थना उन तक पहुंचा देना, ये मैं आपसे निवेदन करती हूं। लेकिन इतना ध्यान रखना कि जब उनका मूड खराब हो तब मेरी एप्लीकेशन उनके सामने मत रख देना, नहीं तो वह रिजेक्ट हो जाएगी। जब वो बिल्कुल स्वस्थ हों, आराम से लेटे हों, चेहरे पर मुस्कान हो, कोई टेंशन नहीं हो, क्या और तुमसे मीठी मीठी बातें कर रहे हों, तब धीरे से विनय पूर्वक
क्या
और मेरी बात तुम उन्हें पहुंचा देना, समझ गया। वो सब बातें लिखी हैं उसमें, जो जो बड़े बड़े उद्योगपति थे ना, टाटा बिरला, ऐसे बड़े बड़े ऑफिसर रखते थे जिनको सबसे ज्यादा तनख्वाह देते थे, और उनकी एक ही ड्यूटी थी कि ये योजना पास करानी है नेहरू जी से, तो 24 घंटा उनका मूड देखते रखना, और जब वे खुशनुमा मूड में हों, कविताएं बोल रहे हों, चुटकुले सुन रहे हों, तब चुपचाप रख करके साइन करवा देना, खत्म। और कोई ड्यूटी नहीं, बाकी तुम उनके पीछे लगे रहना, क्या वो तरकीब तो इनको सब लोगों को, उद्योगपतियों को तुलसीदास जी ने बताई
कि कैसे कब दम करना। पारसनाथ भगवान को भी लिखी चिट्ठी, और उसमें ये लिखी कि हे पारसनाथ भगवान, तुम मेरी बुद्धि ऐसी कर देना, राम जी से मेरी प्रार्थना पहुंचा देना कि मैंने आज तक आपके अलावा किसी की स्तुति नहीं।
श्री कृष्ण भगवान तो सामने ही आ गए कि मुझे नमस्कार कर, तुमने तो भद्र में किया ना, जैसे भगवान महावीर के सामने खड़े हो, महावीर कह रहे कि मुझे नमस्कार कर, कि नहीं करूंगा, और उनकी बहुत वाद विवाद हुआ, पूरा देवाग हमें स्तोत्र लिख दिया है, कभी सुनाएंगे मौका लगेगा तो। ऐसे वहां भी हुआ, किसकी बात चल रही थी बस, श्री कृष्ण। तो उन्होंने कहा कि देखो, आप पीला दुपट्टा पहने, ये मुकुट बांधे, कलगी लगाए, वो काहे की, समझ में ना, और ऐसे मुरली लिए बजाते हुए बहुत ही अच्छे लगते हो, बहुत ही अच्छे लगते हो, पर एक बात सुन लो कि तुलसी मस्तक जब नवे, जब धनुष बाण ले हाथ। अब तुम धनुष और बाण ले लो, कंधे पर धनुष, हाथ में बाण, तो तुम्हें मैं नमस्कार करूंगा, तब तक नमस्कार नहीं करूंगा। मैंने तुम राम के रूप में आओगे तो नमस्कार करूंगा, नहीं तो मैं तुम्हें भी नमस्कार नहीं करूंगा। किसकी ताकत थी, हिंदू की, केवल श्री कृष्ण भगवान को रिजेक्ट कर दे, क्यों? भले विराजे नाथ, और तुलसी मस्तक तब नवे, जब धनुष बाण लेऊ, है ना। ऐसा अपना एक त्रिकाली भगवान आत्मा है। 24 तीर्थंकरों की हम स्तुति करें और एक ही प्रार्थना करें कि हे भगवान, मैं किसी पर की स्तुति नहीं करूं, अपने त्रिकाली भगवान आत्मा में को जान मान के उसमें रम जाऊं, ऐसी निश्चय स्थिति ही मुझे प्रकट हो, ऐसी भगवान सबसे प्रार्थना करना। क्यों? तेरा भगत किसी का गुलाम नहीं हो सकता। हे भगवान महावीर, तेरा भगत किसी का गुलाम नहीं हो सकता। क्या मतलब भैया, किसी का माने तेरा भी, ये तेरा भगत किसी का गुलाम नहीं हो सकता, तेरा भी, क्या समझ में आई ना। वो त्रिकाली ध्रुव भगवान, वो निश्चय, वो कहते सारा व्यवहार हे है त्यागने योग्य है, ये निषेध करने के लिए एक गाथा लिखी थी, इसलिए वो कहते हैं कि भाई इसको भैया व्यवहार इतना बताया ही बनाई क्यों, हम तो चक्कर में आ गए, शास्त्र में लिखा था ये मान मान के करते रहे, और आज तुम हमारे लिए सब एकदम क्रॉस कर देते हो, क्या करें। स सम्यक दर्शन होने के बाद जब तक केवल ज्ञान नहीं होता है तब तक ज्ञानियों के जीवन में ऐसा व्यवहार देखा जाता है, इसलिए हमने उस व्यवहार को बताया है। गुरुदेव की भाषा में कहें कि जाने लो प्रयोजनवान छे, जाना हुआ प्रयोजनवान छे, इसको जानो कि ऐसा होता है। अपनाना नहीं कह रहे तुम क्या तो ऐसे थे किसी को नमस्कार नहीं करूं और हमने तो 24-24 के चरणों में नमते झुकते देखा है। क्यों राजना रजतनाथ सबके चरणों में झुकते देखा है, तो सोचो कल्पना करो आप जैन धर्म कैसा अद्भुत है। और ये गाथा भी कितनी ऊंची गाथा है। मैं आज अगली गाथा पे जाना चाहता हूं, इसे थोड़ा जल्दी निपटाऊंगा क्योंकि विषय हो चुका है। किंतु आत्मज्ञान रूप निश्चय ज्ञान, आत्मदर्शन रूप निश्चय दर्शन और आत्मस्थिरता रूप निश्चय चारित्र ही वास्तविक सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र है। दौलत राम जी ने यहीं से लिया है वो। परद्रे बनते भिन्न आप में
भला है, आप रूप को ज्ञान पनो सो सम्यक ज्ञान कला है, आप रूप में लीन रहे थे सम्यक चारित सोई,
ये चौथी लाइन बोलने को किसने कहा था? अरे भाई वो ये कह रहे हैं, समझना जरा मैं क्या कहना चाहता हूं कि श्रद्धा में एक सेकंड को भी वो व्यवहार उपादेय बने आए तो मोक्ष मार्ग खंडित हो जाएगा, तो नहीं चलेगा। समझना, ज्ञान में एक सेकंड को भी आए तो नहीं चलेगा और क्रिया में जीवन में अरबों वर्ष तक रहे तो चलेगा। कितने वर्ष तक चलेगा ये पूछना होता है, कौनार्योग वाले से पूछ लो कि जब चौथे कौनार्योग सम्मान दर्शन हो जाए और तब से लेकर वो समझें कायम रहे, मतलब समझ लो वो छायक हो अथवा नहीं कर वो जोड़ लू छायक हो, क्यों वो 66 सागर वाला थे उस समय और छायक में बदल जाए फिर नीचे नहीं हो, और उसके बाद वो जो 13वां मोह का नाश और 13वां गुणस्थान जब तक नहीं होगा तो वो अरबों बरस है। ये पल्लों मल्लों की भाषा में, सागरों की भाषा में ये लोग बता देंगे आपको, क्योंकि मेरे को वो इतने बड़े लंबे चौड़े गड्ढे खोदना और बेचारे भेड़ों के बाहर काटना बहुत मुश्किल काम लगता है। समझ गए ना, मैंने वो बहुत काल है मेरे कहने का मतलब। ऐसी श्रद्धा में एक सेकंड को स्वीकार नहीं है, उसी वक्त में छात्र हो जाएगा, ज्ञान में उसी बात नहीं है, है? और चारित्र में इतने काल रहेगा और वाणी में कि जिस नय का कथन कर रहे होगे वो चलेगी, व्यवहार का कथन कर रहे होगे तो चलेगा, निश्चय का कथन कर रहे हो तो ये चलेगा। आप समझे ना, श्रुत ज्ञान रूप सम्यक ज्ञान नयों में भी जो ज्ञान का तुम प्रयोग अंदर में कर रहे हो जिसमें का वो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा कहने से मिथ्या दृष्टि नहीं हो जाओगे, कहना तो व्यवहार है और मानना मिथ्यात्व है। अपनी पत्नी को पत्नी कहना तो व्यवहार है और मेरी वो कोई है ऐसा मानना मिथ्यात्व है। समझ आए ना, हम क्यों है ना, ये तो मान्यता की बात है, कहने को कौन मना करता है। इस प्रकार यह सुनिश्चित हुआ कि व्यवहार नए निश्चय नए में परस्पर निषेध निषेधक संबंध है। देखो जब कोई आदमी अपना काम पूरा कर ले तो फिर उसको हट जाना ही अच्छा है, जैसे कि एक डॉक्टर है ना, वो ऑपरेशन करता है, तो कहने को तो एक डॉक्टर ऑपरेशन करता है, लेकिन पूरी टीम होती है ना, तो पहले वो पूरी टीम, डॉक्टर को तो मरीज देख ही नहीं पाता है, उसके पहले ही लोग उसे बेहोश कर देते हैं, क्यों? और वो होश में आने के पहले ही डॉक्टर भाग जाता है, वो तो उसे बता देते हैं कि इसने ऑपरेशन किया, तब उसे पता चलता है। हमारा तो हम होश में आए थे 10 दिन बाद, तब उस डॉक्टर ने आगे कहा था कि आपका ऑपरेशन मैंने किया है, तब हमने उसकी शक्ल देखी थी, क्यों? तो पहले वो करते ना, तो अब एक एक आदमी पर अपना काम करता है, तो वो जब अगले वाले को काम करने आना है तो उसे हटना पड़ता है कि नहीं, कि हट जा तू, तो वो अपना करता है, वो अपना उसने पूरा कि हट जा तू, तो वो अपना करता है, हट जा तू, कहता जाता है ना, कब तक? जब तक वो हेड नहीं आता है ऑपरेशन करने वाला, तब हटाता जाता, हटाता जाता कि नहीं, फिर जब वो ऑपरेशन मैंने उनका काम पूरा हो जाता है ना, तभी हटाते हैं ना, कि पहले अधूरे काम में थोड़ी हटाते, पूरा हो जाता तब हटाते ना। अब वो जो आया डॉक्टर है बिल्कुल जो असली करता है, तो वो भी करके फिर उसे कोई हटाता है, वो हट जाता है, क्यों? और उसके बाद जिसको आना हो जाता है, वो टांके मांके लगाने वाले भी आ जाते हैं, है? फिर कैसा क्रम चलता है राजे में? फिर वे हट जाते हैं और दूसरे आ जाते हैं, फिर वे हट जाते हैं, दूसरे यहां से हटा देता, हटा देता, हटा देता, फिर वहां से हट जाते, हट जाते, हट जाते, अशुभ भाव को छोड़ देता है, हटा देता है, और शुभ भाव हट जाता है, समझ गए ना? अब गिने ना, क्या महावीर को छोड़ दें? क्या जरूरत ही नहीं पड़ेगी? तुम आत्मा में तो जाओ, वो अपने आप छूट जाएगा, इज्जत वाले को कुछ हटाना नहीं पड़ता है, आप समझ रहे ना? ये जो चपरासी को नोटिस देना पड़ता है, तुम्हें निकाला जाता है, कल से ड्यूटी पे मत आना, ये करना ये करना, अपना हिसाब ले जाओ कि नहीं ले जाओ। और जब एक प्रधानमंत्री किसी मिनिस्टर को निकालता है तो ऐसा कहता है कि निकल जा, ये कहता है आप प्रधानमंत्री जी चाहते, उनका सेक्रेटरी कहता है कि आप त्याग पत्र दे दें, बस क्यों? तो समझदार एक सेकंड में दे देता है। ऐसे भी लोग होते हैं, हार जाते हैं कि तुम्हारे कहने से नहीं दूंगा, जब प्रधानमंत्री जी कहेंगे तब मैं दूंगा। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि अब दे दो भैया त्याग पत्र, हाँ मेरी पूरी बात आपको सुननी पड़ेगी। और कुछ ऐसे भी होते हैं लाल बहादुर शास्त्री जैसे कि प्रधानमंत्री को ये कहने का मौका ही नहीं देते हैं कि तुम त्याग पत्र दे दो। वो समझते हैं कि अभी त्याग पत्र दे देना चाहिए, ऐसी पोजीशन है, तो अपने आप त्याग पत्र दे देते हैं, है ना? भी अपने आप हट जाते हैं ना। तो शुभ भाव इतना नालायक तो नहीं है, तुम जाओ तो अपने त्रिकाली ध्रुव में अंदर में, क्यों? वो तो बिल्कुल हट जाएगा, वो आपको अड़ंगा नहीं लगाएगा भाई साहब, उसको कहने की जरूरत नहीं है। अशुभ छोड़ा जाता है और शुभ छूट जाता है, पाप छोड़े जाते हैं और पुण्य छूट जाता है अपने आप, कहां कि जहां जिसका उपयोगिता खत्म हो जाती है वहां वो छूट जाता है, समोसन भी विकसित हो जाता है ना, वो सब उससे चले जाते हैं अपने आप। हरेंद्र भगवान भी नहीं कहते हैं कि अब तुम जाओ, हमें जल्दी मोक्ष में जाना है, ये भी नहीं कहते थोड़ा और रुक जाओ, जरा 2-4 साल में और लोगों को समझा दूं तो अच्छे भव्य जीवन और कल्याण हो जाएगा, प्रचंड चौदह भी बहुत लोग आते हैं, पूजा भी बहुत करते हैं, वहां पर पहुंच जाएंगे तो कौन पूछे, कैसे नहीं पूछेंगे तो जरूर, बस सर सिद्ध चक्रे भ्यो नमः अर्घम, एक अर्घ में अनंत सिद्धों को 1 सेकंड में निपटा देंगे, समझ आए ना? आपकी तो ऐसा ना कुछ नहीं, जब तक है दिव्य ध्वनि खिड़ती है खिड़ने दो, बंद हो जाए बंद हो जाने दो, जब तक है रहने दो, जब जाएंगे चले जाएंगे, कोई उन्हें जल्दी नहीं है, न रुकने की अपेक्षा है, न जाने की जल्दी है, क्यों? सब ऑटोमेटिक अपने आप समय पर हो जाएगा। हमें तो अपने मतलब की बात पूरी कर ली ना, कि ये मैं हूं, बस खत्म। ऐसा जान लिया, ऐसा मान लिया और उसमें ही जम गए, बस खत्म। सारा जगत में जो होता रहेगा होता रहेगा, कहने में है ना। देखो अब इसके बाद इन गाथाओं के बाद आचार्य जयसेन की टीका में चार गाथाएं आती हैं, जिनमें दो गाथाएं तो आत्मख्याति में आगे 286 और 287वीं गाथा के रूप में आने वाली हैं, और दो गाथाएं आत्मख्याति में हैं ही नहीं। उक्त चारों गाथाओं का अनुशीलन आगे यथास्थान किया जाएगा। अभी तो यहां चलो, अब आगामी गाथाओं का सूचक काव्य लिखते हैं, वो काव्य को अपन पढ़ते हैं।
रागादयो बंध निदान मुक्तास्ते शुद्ध चिन्मात्र महोतिरिक्ता आत्मा परो वा किमुतन्न मित मिति प्रणुम्ना पुनरेव माहु कहे जिनागम माई शुद्धातम से भिन्न जो रागादिक परिणाम कर्म बंध के हेतु वे यहाँ प्रश्न अवे उन रागादिक भाव का यह आत्म यान कौन हेतु है अब कहे।
एक दो पंक्तियों में अथवा संस्कृत की एक पंक्ति में ये कहा कि अभी तक हमने क्या कहा, और दूसरी पंक्ति में ये कहा कि अब हम क्या कहने वाले हैं। देखो पहली पंक्ति में है ना उक्ता, मुक्ता लिखा ना मुक्ता, ये मुक्ता नहीं है उक्ता है, मोक्ष से इसका कोई संबंध नहीं है। ये हमने कह दिया और पुनरेव माहु और अब द्वारा ये बात कहते हैं, है ना। आहु माने कहते हैं और उक्ता माने कह दिया, उक्ता माने कह कर अब ये कहते हैं। संस्कृत में एक तो प्रत्यय होता है, जहां वाक्य पूरा नहीं होता है और वहां हिंदी में अपन करके बोलते हैं ना, ऐसा करके ये करते हैं, वहां उसका प्रयोग होता है, समझे ना। दो प्रत्यय होते हैं इक्त्वा और ल्यप, ल्यप प्रत्यय भी इसी अर्थ में आता है। अभी मैं व्याकरण पढ़ाने नहीं पढ़ाऊंगा, इतना समझ लो। क्या कहा, रागादयो बंध निदान मुक्ता, रागादिक भावों को बंध का कारण कहा गया, है ना, बहुत सरल है। देखो रागादयो बंध निदान मुक्ता, रागादिक को बंध का कारण कहा गया, ते शुद्ध चिन्ह मात्र महो मतिरता, वे रागादिक भाव शुद्ध चैतन्य मात्र जो भगवान आत्मा है उससे अतिरिक्त अन्य अतिरिक्त भाव हैं। क्या शुद्ध चिन्ह मात्र महोतिरिक्ता, शुद्ध चैतन्य मात्र जो भगवान आत्मा है उससे जो भिन्न रागादिक भाव हैं उन्हें वे बंध के कारण हैं, ये बात हमने कही। अब क्या कहते हैं कि उन रागादिक भाव जो बंध के कारण है हमने कहा, उनका निमित्त कौन है, आत्मा आत्मा है कि पर है, आत्मा परोबा है ना, आत्मा है या अन्य है, अपन ने बीच में लगाना है या, और संस्कृत में बाद में लगाते हैं आत्मा परोबा, ये बा को जरा पहले जाओ, बा माने अथवा, आत्मा परो बा, आत्मा है कि पर है, तन निमित्तम उसका निमित्त आत्मा है कि पर है, इति प्रपुन्ना प्रपुन्ना पुनरेव माहु, ऐसा पूछे जाने पर अब उस बात को हम द्वारा कहते हैं। द्वारा कहते हैं माने इशारे इशारे में तो हमने पहले कह दिया, क्या पुनरेव याहू द्वारा कहते हैं उस बात को कि उसका कारण कौन है। देखो कहे जिनागम माई शुद्धात्म से भिन्न, जो जिनागम में शुद्धात्मा से भिन्न जो रागाधिक परिणाम कहे हैं वे कर्म बंध के हेतु हैं, ऐसा जिनागम ने कहा है, वो बात हम कह चुके। अब यहां प्रश्न अब यहां एक प्रश्न है कि उन रागाधिक भाव का यह आत्म या अन्य, ये आत्मा है या अन्य है। देखो या हिंदी में पहले आ गया ना, संस्कृत में बाद में था, वो बाकी जगह या है। कौन हेतु है अब कहें, उनका हेतु कौन है, आत्मा है अन्य है, अब अगली गाथा में ये बात कहेंगे। एक कलश इस सिर्फ दोनों गाथाओं को आपस में दोनों प्रकरणों को जोड़ने वाला कलश है, पूर्व गाथा का संहार और अगली गाथा की उत्थान का कलश है, इसलिए इसमें ज्यादा समझने समझाने लायक कोई बात रहती नहीं है। ख्याल में आई ना, इतनी सी बात पूछी है। अब गाथाएं पढ़ते हैं। जय फल
मणि शुद्धो न स्वयं परिणम दिराग मादिहिम रंगज्यदि अन्ने हिदुम सोरत्तादिं दवेहिम एवं नाणी शुद्धो न स्वयं परिणम दिराग मादिहिम रायज्यदि अन्ने हिदु सोरागादि दोषे ज्यो लालिमा मैं स्वयं परिणत नहीं होता फटिक मणि पर लालिमा युत द्रव्य के ज्यो ज्ञानी जनरा रागादि के ही उदय से वे किए जाते राग मैं।
बहुत बहुत सरल है ना, देखो हिंदी के पद में बिल्कुल बात क्लियर हो ही जाती है। जह फली मणि फले मणि, ये स्फटिक मणि, जिस प्रकार जब ये गाथाएं आती हैं तो मुझे एक वो याद आ जाती है कि जब मैं अशोकनगर में रहता था तो वहां एक बाबा थे भगवान दास जी करके, बहुत बुजुर्ग थे, वे सुनते बिल्कुल नहीं थे। एक इतना लंबा वो लिए रहते थे पीतल का, जहां अपने कान में लगाते थे और आपके मुंह पे लगा देते थे और तुम चिल्ला के बोलो तब वे एक आध बात सुनते थे, और वो समय सार में ही लगे रहते थे 24 घंटा। वो मतलब 100 वर्ष की उम्र में ज्यादा होके गुजरे होंगे, और वो राजेंद्र जी तुम्हारे पिताजी के भी गुरु थे, बाबा भगवान दास जी ने पंडित चुन्नीलाल जी को पढ़ाया था, और वे नीचे बैठ करके महिलाओं को पढ़ाते थे, और मैं उसी के ऊपर के मंजिल में बैठ करके लड़के लड़कियों को पढ़ाता था धर्म। वे 100 वर्ष के रहे होंगे, दादा थे वो अशोकनगर रावगढ़ 2-4 गांव में रहते थे, तो जब भी वो पढ़ते रहते थे फटाफट फटाफट, तो 4 दफे मेरे पास जीना पर चढ़ के फटाफट 100 वर्ष के आदमी आ जाते थे, और पंडित जी गाथा की पंक्ति का अर्थ क्या है जो उनकी समझ में नहीं बैठती थी ना, तो वो आकर के मेरे से पूछते थे, तो मुझे बिल्कुल वो दृश्य जब ये आती है, ये पंक्ति आगे मेरे से उनने पूछी थी, इस गाथा का अर्थ क्या है, बस उनने बोल दिया। अब तो मैं चिल्ला चिल्ला के बोलूं उनके कान में तलब बाबू लगा लेते थे इस गाथा का, समझे ना। अब जबकि घटना है नहीं, तुम 2-4 साल के हो गए तो हो गए, और कि नहीं भी हो गए तो जरूर है, समझे ना, तब की घटना है। रोज ही ना 10 दफे आते थे, ये 2 घंटे में हम बैठते थे वहां पढ़ने पे नीचे, और मैं अभी महिलाओं को पढ़ाते रहते थे, और जब उनको जरा गड़बड़ हुई तो फटके एकदम ऊपर से जीना से ऊपर आ जाते थे। ये कब घटना की बात है, जब मैं 21-22 वर्ष का था और वो 98-100 वर्ष के होंगे, समझे ना। अब मैं 78 का हूं तो कितने वर्ष पुरानी बात हो गई है, ये समझ लो आप, इस समय 58-59 की होगी। इस गाथाकार से उन्होंने मेरे से पूछा था, अब देखो अभी अपन करते हैं, उनको जो बताया था वो आपको बताता हूं। जह फलह मणि जैसे स्फटिक मणि, ये प्राकृत भाषा का ये नियम है कि उसमें संयुक्ताक्षर नहीं होते हैं, बहुत कहीं नहीं मिलेंगे, क्या जगह मिल जाए तो मिल जाए। वो आत्मा तो वे आव ताव मा पूरा लिखेंगे, नहीं तो आधा कह देंगे, नहीं तो चेदा कह देंगे। मैंने वो सरल उनकी जनता की भाषा होती है ना, तो उसमें ज्यादातर ऐसा होता है कि जिस प्रकार वह स्फटिक मणि, शुद्ध स्फटिक मणि न स्वयं रागादि में परिणमित, रागादि रूप परिणमित नहीं होता। अब आप कहेंगे स्फटिक मणि में राग कैसे हो जाएगा, वो तो पुद्गल है, क्यों है ना समस्या। नीचे देखा ना कि ये भैया राग माने लाल रंग भी होता है, और राग माने जो आत्मा में उत्पन्न होता है ये भी होता है, और ऊपर जो राग शब्द है वो लाल से मतलब है, और आदि लाल आदि रंगों रूप वो स्फटिक मणि तो जैसा निर्मल होता है उसका स्वभाव निर्मल होता है, सफेद नहीं। सफेद भी एक कलर है भाई साहब, जैसे लाल कलर है सफेद भी एक कलर है। वो स्फटिक मणि है वो रंग रहे थे एक तरीके से, रंग तो उसमें भी है लेकिन एक उदाहरण के लिए वो रंग रहित है। तो जैसे वो स्फटिक मणि स्वयं किसी रंग रूप नहीं होता, बिना रंग का होता है। अब उसका स्वभाव तो बिल्कुल निर्मल है, नीरंग है, नीराग है। ये आता है नियम सार की गाथाओं में बहुत आता है, जो अपन ने कुंद कुंद शतक में भी गाथाएं रखी हैं, दो चार गाथाएं बोलो, नीराग है नीर है ना। ठीक है बहुत हो गई समझे ना। तो वो लाल आदि रंगों रूप स्वयं परिणमित नहीं होता, क्योंकि वो स्वयं परिणमित हो तो वो उसका स्वभाव हो जाए। जो काम स्वयं होता है वो उसका स्वभाव होता है, लेकिन कैसे होता है कि अन्ने हिम रत्तादि दब्बे हिम रंगिज्जदि, अन्न लाल आदि द्रव्यों के द्वारा रंगा जाता है, मतलब उसमें लाल आदि द्रव्यों का संयोग होता है तो वो लाल होता है। क्या समझ रहे ना। तो ये रत्त आदि शब्द है, तो रत्त माने तो लाल होता ही है, तो उसको मतलब राग माने भी लाल होता है। एवं नाणी शुद्धो, ऐसे वो स्फटिक मणि भी शुद्ध था तो ज्ञानी भी शुद्ध, इसी प्रकार शुद्ध ज्ञानी न स्वयं रागादि मीह परिणमदि, रागादि रूप परिणमित नहीं होते। वही रागादि शब्द ऊपर है वो लाल मां के अर्थ में है, और वही रागादि शब्द नीचे है जो मिथ्या और राग द्वेष मोह इन सब के बारे संबंध में है ना। और अन्य हिम अन्य के द्वारा, जैसे वो रंगा जाता है ना स्फटिक मणि, ऐसे ही अन्य के द्वारा, अन्य के निमित्त से वो राग द्वेष रूप परिणमित होता है। देखो ना, रागादि हिम दोषे हिम, रागादि दोष रूप परिणमित होता है, एक गाथा का अर्थ है। और नीचे अपन ने पढ़ी है, वह साफ है कि जो लालिमा मैं स्वयं ही परिणमित नहीं होते, स्फटिक मणि परिणमित नहीं होता। अपन ने लालिमा कर दिया, यहां भी रागादि कर देते तो और दिक्कत हो जाती। तो वही रागादि का अर्थ है लालिमा, जो लालिमा मैं स्वयं परिणत
होता, स्फटिक मणि पर लालिमा युत द्रव्य के संयोग से हो लाल, क्यों ज्ञानी जन रागादि में परिणत न होते, स्वयं ही रागादि के ही उदय से वे किए जाते राग में।
बहुत सरल हो गई ना कि वो स्वयं नहीं होते हैं, राग आदि उनके अपने निमित्त से होते हैं। मैंने मन बोल ने कहा था कि उसका निमित्त क्या है ये कहो। देखो आत्मा परो वा किम तन निमित्तम ही प्रपुन्ना पुनरेव माहू। तो उन्हें निमित्त पूछा था कि कौन है, तो उन्होंने वो निमित्त बता दिया। सुनो अब ये इसकी जो गद्य है टीका अमृतचंदाचार्य की, वो भी सरल है क्योंकि उन्होंने ज्यादा इसमें न्याय की भाषा का प्रयोग नहीं किया है, और किया तो बहुत सरल। जिस प्रकार स्वयं प्रणमन स्वभाव वाला होने पर भी, अब होने पर भी माने क्या कि जब वो स्वयं प्रणमन स्वभाव वाला है तो रागादि रूप प्रणमन हो जाना चाहिए, कि प्रणमन महा स्वभाव वाला तो है लेकिन स्फटिक मणि अपने शुद्ध स्वभावत्व के कारण स्वयं में रागादि का निमित्तत्व न होने से वो स्वयं ही उपादान हो, स्वयं ही निमित्त हो जाए। दो तो चाहिए ना, एक निमित्त एक उपादान। तो स्वयं ही लिखा ना, स्वयं में रागादि का निमित्तत्व न होने से वो स्वयं रागादि का निमित्त नहीं होता है, अपने आप लालिमा आदि रूप परिणमित नहीं होता, किंतु उस परद्रव्य के द्वारा ही शुद्ध स्वभाव से च्युत होता हुआ लालिमा आदि रूप परिणमित किया जाता है। जो परद्रव्य स्वयं लालिमा आदि रूप होने से स्फटिक मणि की लालिमा में निमित्त होता है, मतलब परिणमित किया जाता है, निमित्त रूप से बात है, वो निमित्त होता है। उसी प्रकार स्वयं प्रणमन स्वभाव वाला होने पर भी यह शुद्ध आत्मा अपने शुद्ध स्वभाव के कारण स्वयं में रागादि का निमित्तत्व न होने से अपने आप रागादि रूप प्रणमित नहीं होता, अपितु उस परद्रव्य के द्वारा ही शुद्ध स्वभाव से च्युत होता हुआ रागादि रूप प्रणमित किया जाता है। जो परद्रव्य स्वयं रागादि रूप होने से आत्मा के रागादि रूप प्रणमन में निमित्त होता है, माने वो कर्म का उदय है, वो उसके द्वारा रागादि रूप प्रणमित किया जाता है। अब ये बहुत प्रसिद्ध छंद है, टोडमल जी ने उद्धृत किए हैं इन छंदों में कि तद निमित्त, जो ऐसा मानते हैं कि आत्मा किसी पर के निमित्त के बिना स्वयं ही रागादि रूप प्रणमित होते हैं, तो वे अज्ञानी मोक्षमा प्रकाश में आया ना। उसमें उक्त संपूर्ण कथन का तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार स्फटिक मणि के लाल रंग रूप प्रणमन में शुद्ध स्वभाव वाला स्फटिक मणि स्वयं तो निमित्त हो नहीं सकता, अब जपा पुष्प आदि कोई भी परद्रव्य के निमित्त से उसमें निमित्त होता है। ये दो शब्द आते हैं शास्त्र में, एक जपा पुष्प और एक तमाल पुष्प। जपा जो पुष्प है वो लाल होता है, और तमाल का जो फूल है वो काला, लाल थोड़ी मटमैला काला होता है। तो कहते हैं वो लाल जपा की फूल की डांक लगा दो तो वैसा हो जाता है, और तमाल पुष्प भी लगा दो तो वैसा हो जाता है। तो मतलब शुभ कर्म का निमित्त हो तो वो शुभ हो जाता है, अशुभ का निमित्त हो तो काली माँ अशुभ की द्योतक है और लाली माँ शुभ की द्योतक है, और रंगहीनता शुद्ध परिणाम की द्योतक है ना, समझे ना। तो काली माँ और लाली माँ, इसके लिए उन्होंने दो पुष्प चुन लिए, जवाब पुष्प और तमाल पुष्प। देखो है ना, उसी प्रकार भगवान आत्मा के राग रूप प्रणमन में शुद्ध स्वभाव वाला भगवान आत्मा स्वयं तो निमित्त हो नहीं सकता, क्रोध आदि रूप कोई कर्म ही उदय का उदय ही उसमें निमित्त होता है। भाव यह है कि आत्मा का रागादि रूप प्रणमन नैमित्तिक भाव है, उपाधि भाव है, कर्मोदय जन्य भाव है, विभाव भाव है, स्वभाव भाव नहीं। बस इतना बता देना कि ये भगवान आत्मा का स्वभाव नहीं है, ये विभाव है, जैसे कि स्फटिक मणि का ख्याल में आए ना। तो और किसी रंग रूप प्रणमित होना स्वभाव नहीं है, विभाव है, उसमें परद्रव्य का निमित्त रूप से संयोग होना अत्यंत आवश्यक है। भाई इतनी ये बात में हो गई, अपना समय हो गया, कल जो दो कलश हैं इसके बाद इनको अपन पढ़ेंगे।